बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।
नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। क्रिसमस और नव वर्ष का आगमन यानी गीत संगीत और नृत्य, उत्सव ही उत्सव चारों ओर। लेकिन यदि इस बाहरी उत्सव के साथ ध्यान की गहराई भी हो, बोध भी हो, तो हमारे अंदर महोत्सव घटित हो सकता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ओशो कैसे नृत्य और संगीत के माध्यम से हमें ध्यान की गहराइयों और मौन में ले जाते हैं। ओशो संगीत के मूल शिल्पकार हैं मिलारेपा। आज के इस सफर में ओशो के प्रवचनों के साथ साथ मिलारेपा की कही कुछ बातें भी होंगी जो ओशो के नृत्य संगीत के गहरे प्रयोजन को स्पष्ट करेंगी। आज के प्रवचन का यह अंश ओशो के साधना सूत सीरीज के 11वें प्रवचन से लिया गया है।
ये सूत्र समझने जैसा है क्योंकि जीवन क्रांति के की दिशा में चलने वाले के लिए बहुत ही विचारणीय। चौथा सूत्र, जीवन का संगीत सुनो, जो उसे खोजो और पहले उसे अपने हृदय में ही सुनो। आरंभ में तुम कदाचित कहोगे कि यहां गीत तो है ही नहीं, मैं तो जब ढूंढता हूं तो केवल बेसुरा कोलाहल ही सुनाई देता है। और अधिक ढूंढो, यदि फिर भी तुम निष्फल रहो तो ठहरो और भी अधिक गहरे में फिर ढूंढो। एक प्राकृतिक संगीत, एक गुप्त जल स्रोत प्रत्येक मानव हृदय में, वह भले ही ढका हो, बिल्कुल छिपा हो और नीरव जान पड़ता हो, किंतु वह है अवश्य। जीवन का संगीत सुनो, लेकिन इसे सुनने की पहली शर्त है कि इसे पहले अपने हृदय में सुनो, नहीं तो ये बाहर सुनाई नहीं पड़ेगा। हम बाहर संगीत सुनते शायद सोचते भी हैं कि संगीत समझ में आ रहा है, सिर भी हिलाते, आनंदित भी होते, लेकिन अगर भीतर का संगीत नहीं सुना है तो ये सब ऊपर ऊपर की बात है, इससे संगीत में प्रवेश ना हो पाएगा। संगीत अध्यात्म है, और जब तक आपके हृदय में राग का अनुभव ना होने लगे, और जब तक आपकी श्वास श्वास में एक लयबद्धता ना आ जाए, और जब तक आपका जीवन स्पंदन वीणा ना बन जाए, जब तक आपको भीतर ना सुनाई पड़ने लगे वो नाद जो जीवन का नाद है, जिसको पैदा नहीं करना होता, जो चल ही रहा है, जो आप हैं, जब तक आपको वो सुनाई ना पड़ जाए, तब तक इस जगत में जो अनंत संगीत गुंजायमान हो रहा है उससे आपकी कोई पहचान ना होगी। और एक बार आपको अपने हृदय में सुनाई पड़ जाए वो नाद, तो आप पाएंगे कि हर तरफ झरने की कलकल में, हवाओं का गुजरना वृक्षों के पत्तों के बीच से, उसमें पत्थर के गिरने में, नदी के बहने में, नीरवता में, रात्रि के सन्नाटे में, झिंगरों की आवाज में, सब तरफ आपको अपने हृदय की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगे, ये जगत एक संगीत हो जाए। लेकिन ये होगा उस दिन जिस दिन हृदय का सुना जा सके। क्यों? क्योंकि हृदय इतना निकट है, जब आप उसका संगीत नहीं सुन पाते तो और सब चीजें तो दूर है, उनका संगीत आप ना सुन पाएंगे। तारे बहुत दूर है, उनका संगीत आपको कैसे सुनाई पड़ेगा? और हृदय इतना निकट है, उसका ही सुनाई नहीं पड़ रहा है। जो निकटतम है उससे यात्रा शुरू करो। पुराने दिनों में, बहुत पुराने दिनों में, इतिहास ने जिसका स्मरण भी छोड़ दिया है, संगीत की शिक्षा ध्यान से शुरू होती थी, क्योंकि वाद्य पर क्या करोगे, कंठ से क्या होगा जब तक हृदय पर संगीत का स्वर अनुभव न होने लगे। नृत्य की शिक्षा ध्यान से शुरू होती थी, क्योंकि शरीर को हिलाने से क्या होगा जबकि स्पंदन भीतर आने ना लगे, जबकि भीतर विद्युत प्रवाहित ना होने लगे, जबकि भीतर कोई न नाच उठे, तब तक शरीर को हिलाना कवायत होगी, तब तक वो नृत्य नहीं होगा। और चाहे कितनी ही कुशलता आ जाए शरीर को नचाने की, वो कुशलता टेक्निकल होगी, हार्दिक नहीं होगी, उसमें कहीं भी हार्द नहीं होगा, कुशलता होगी। और कुशलता बहुत गहरी हो सकती, फिर भी आत्मा नहीं होगी, शरीर ही नाचेगा। वही फर्क है, बड़े से बड़ा संगीतज्ञ भी नाच सकता है, नर्तकार नाच सकता है, बड़े से बड़ा संगीतज्ञ संगीत को जन्म दे सकता है, लेकिन कृष्ण के नृत्य में कुछ बात और है। टेक्निकली वो गलत भी हो सकते हैं, उनके नृत्य में भूल चूक खोजी जा सकती है, और पंडितों को लगा दे तो वो जरूर खोज लेंगे, लेकिन फिर भी उनका नृत्य किसी और आयाम में है। मीरा के संगीत में भूल चूक खोजी जा सकती है, काव्य में भूल चूक खोजी जा सकती है, व्याकरण में भूल चूक खोजी जा सकती है, क्योंकि मीरा न तो कोई कवि, न वो कोई नर्तकी है, न वो कोई संगीतज्ञ है, लेकिन फिर भी किसी अंतस के कोने में, गहरे में संगीत घटा है, नृत्य घटा है, काव्य का जन्म हुआ है, वही काव्य वही नृत्य शरीर तक आ गया है, बाहर तक फैल गया है। इसलिए उसके नृत्य में कुछ बात ही और है, वो इस जगत का नहीं है नृत्य, वो कहीं पार से आती है कोई किरण, वो कहीं दूर की खबर लाती है। इसलिए मीरा छा गई हृदय पर, बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए, मीरा की कोई तुलना नहीं उनसे, टेक्निकली कोई उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन संगीतज्ञों को हम भूलते चले जाएंगे, मीरा को भूलना संभव है। चैतन्य नाचते हैं, उनके नाचने में ना कोई व्यवस्था है, न कोई जानकारी, नाचना अनगढ़ है, लेकिन नृत्य में कुछ प्राण है, कोई आत्मा है, नृत्य सजीव है, शरीर ही नहीं कपरा है, भीतर कहीं गहरे में स्पंदन हो रहे हैं और शरीर उन स्पंदनों की केवल खबर दे रहा है। नृत्य संगीत जैसी सारी कलाओं का जन्म कभी मंदिर में हुआ था, उनका जन्म मंदिर से, वो मंदिर से फिर लोक लोक में व्याप्त हो गई, उनका प्राथमिक चरण कभी अध्यात्म की खोज का ही हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे सभी चीजों के साथ होता है कि हम उसके बाह्य आवरण में ज्यादा उत्सुक हो जाते, फिर बाह्य आवरण की व्यवस्था में उत्सुक हो जाते, फिर हम इतनी व्यवस्था कर लेते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि जिसके लिए व्यवस्था कर रहे थे वो कभी का मर चुका है, अब हम शरीर की सजावट किए चले जा रहे हैं। संगीत बहुत दूर चला गया अध्यात्म से, नृत्य बहुत दूर चला गया, इतना दूर कि करीब करीब उल्टा हो गया, करीब करीब नृत्य और संगीत अब वासना की सेवा कर रहा है, कभी वो आत्मा से पैदा हुआ था, अब वासना की सेवा में रत, इसलिए इस्लाम को तो इनकार ही कर देना पड़ा संगीत को कि ये पाप है। ये हैरानी की बात है मगर सोचने जैसी है, हिंदुओं ने संगीत को श्रेष्ठतम समझा, संगीत की अनुभूति को परम ध्यान समझा, और हजारों साल बाद जो आखिरी धर्म जमीन पर आया इस्लाम, उसने संगीत को वर्जित कर दिया कि मस्जिद के सामने संगीत नहीं बज सकता, संगीत को पाप घोषित कर दिया। इस्लाम भी सही है और हिंदू भी सही है, जिस दिन संगीत पैदा हुआ था उस दिन वो परम ज्ञान का हिस्सा था, ध्यान का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे हटते हटते वो वासना की सेवा में रत हो गए, और जब मोहम्मद का जन्म हुआ तो संगीत वासना की सेवा में रत था, वो काम वासना का हिस्सा हो गया था, इसलिए मोहम्मद ने कहा कि संगीत मस्जिद के सामने वो पाप। दोनों सही है, क्योंकि संगीत के दोनों बिंदु दो छोर। एक बात स्मरणीय है कि संगीत वासना की सेवा में लग जाएगा अगर आपने उसे पहले भीतर ना सुना, अगर बाहर सुना तो उसकी जो चोट है वो आपके काम केंद्र पर होगी, क्योंकि काम केंद्र आपका सबसे बाहरी केंद्र है, सबसे निम्न, सबसे बाहरी। अगर आपने संगीत भीतर सुना तब तो वो आत्मा में प्रध्वनित होगा, अगर आपने बाहर सुना तो उसकी पहली चोट, पहला आघात सेक्स सेंटर पर होगी, काम केंद्र पर होगी, क्योंकि वही निकटतम है, और तब अनिवार्य रूप से संगीत काम की सेवा में संलग्न हो जाए। तो कामतर लोग नाच में रस लेते, गान में रस लेते, तो धीरे धीरे राजा महाराजाओं के दरबार की बात हो गई, साधु दूर हटता गया क्योंकि असाधु संगीत का रस लेने लगा, लेकिन कारण संगीत नहीं है, कारण अगर भीतर से पहले यात्रा ना हुई तो ये उलझन आएगी। अगर भीतर से यात्रा हुई, एक बार भीतर का संगीत अनुभव में आया, तो फिर जगत में जो भी संगीत संभव है, निर्मित अनिर्मित, प्राकृतिक कृत्रिम, वो सभी संगीत एक बार भीतर का स्मरण आ जाए तो वही चोट करेंगे। नानक अपने साथ एक संगीतज्ञ को रखते थे, बोलते कम थे, गाते ज्यादा थे, और बगल में बैठा मस्ताना वो अपने एक तारे को बजाता, पर नानक पहले अजपा की शिक्षा देते थे कि पहले भीतर अजप का जो नाद है वो सुना जाए, और जब उनके साधक अजपा के नाद में लीन होने लगते थे, भीतर का नाद सुनने लगते थे, तब वो बाहर का संगीत भी साथ में देते। ये बाहर का संगीत भी तब भीतर के उस गहन संगीत के साथ एक हो जाता, और जब बाहर और भीतर का संगीत एक होता है तो बाहर और भीतर मिट जाते, सिर्फ संगीत रह जाता। वो संगीत का क्षण ब्रह्म अनुभव का क्षण हो जाता। पर उसे खोजो और पहले उसे अपने हृदय में ही सुनो। आरंभ में तुम कदाचित कहोगे कि यहां तो गीत तो है ही नहीं, संगीत तो है ही नहीं, मैं तो जब ढूंढता हूं तो केवल बेसुरा कोलाहली सुनाई पड़ता। निश्चित ही जब तुम पहली दफा भीतर जाओगे तो सिवाय भीड़ और बाजार के वहां कुछ भी ना मिलेगा, क्योंकि तुमने अब तक भीड़ और बाजार को ही अपने भीतर पहुंचाया है। तब वहां तुम शोरगुल सुनोगे, वहां व्यर्थ की आवाजें सुनाई पड़ेंगी, वहां खंड खंड टुकड़े बातचीत के सुनाई पड़ेंगे जिनमें कोई तुक भी नहीं, संगीत तो बहुत दूर जिनमें कोई संगति भी नहीं, जिनमें कोई संबंध भी नहीं। अगर तुम बैठ जाओ एकांत में और तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे तुम कागज पर लिखो तो तुम समझोगे कि ये कोई पागल है मेरे भीतर या बहुत पागल है मेरे भीतर। अभी वैज्ञानिक सोचते हैं कि आज नहीं कल ऐसा उपाय कर लेंगे कि आपकी खोपड़ी में विद्युत का यंत्र लगा के एम्पलीफाई किया जा सके कि वहां भीतर जो चल रहा है उसे और लोग भी सुन सके। कोई राजी नहीं होगा इस काम के लिए कि आपके भीतर जो चल रहा है उसे और लोग भी सुन लें। एक दफा और उन्हें सुन लिया फिर आपका कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आप अपना एक चेहरा बनाए हुए बैठे हैं, वो बिल्कुल नकली। आप बड़े बुद्धिमान दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब नकली। वो भीतर जो चल रहा है वो बिल्कुल विक्षिप्त स्वर है। वहां स्वभावतः जब आप भीतर जाएंगे तो पहले ये विक्षिप्तता ही सुनाई पड़ेगी, पहले आपको यही आवाजें सुनाई पड़ेंगी। उनसे डरना मत, घबराना भी मत, और थोड़े भीतर प्रवेश की जरूरत है। साक्षी भाव से उन्हें सुनना तो भीतर प्रवेश हो सकेगा। उनके विरोध में भी कुछ मत करना, क्योंकि विरोध में किया तो वहीं उलझ जाओगे। उनसे लड़ना भी मत, क्योंकि लड़े तो तुम भी एक हिस्सा हो जाओगे इस भीड़ में उपद्रव का, उपद्रव और बढ़ जाएगा। उनको रोकने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि रोकने से उनसे छुटकारा नहीं है, और फिर जिससे हम रोकते हैं उसकी छाती पर हमें बैठे रहना पड़ता है, उससे आगे नहीं जा सकते। उनके साथ कुछ करना ही मत, तथस्थ भाव से। बुद्ध ने कहा है उपेक्षा से भीतर की तरफ चलना। वो चल रहा है शोरगुल, चलने देना। जैसे एक बाजार से तुम गुजर रहे हो तो ठीक है, बाजार है, तुम उसकी चिंता नहीं ले रहे हो। ऐसे ही तुम ये भीतर के बाजार से भी गुजरते वक्त परेशान मत होना, एक उपेक्षा का भाव रखना कि ठीक है बाजार है, अब तक यही इकट्ठा किया है वो है। तुम चुपचाप साक्षी भाव से भीतर की तरफ चलना, और गहरे खोजना, और अधिक गहरे ढूंढो। यदि फिर भी तुम निष्फल रहो तो ठहरो और भी अधिक गहरा ढूंढो। डरना मत, क्योंकि निश्चित ही स्रोत है, वो स्रोत अनेकों ने पाया है और तुम भी पा सकते हो। वो जिन्होंने पाया है उनकी गवाही है कि पाया जा सकता है, वो तुम्हारे भीतर है। परत दर परत दबा है, बहुत परतें हो सकती हैं, लेकिन घबराना मत और उसकी खोज जारी रखना। और कितना ही उपद्रव भीतर मालूम पड़े तुम शांत बैठ के उस उपद्रव को देखते रहना।
मिलारेपा गुरु शिष्य संबंध का जीता जागता उदाहरण है। वो कहते हैं,
उनके सामने संगीत बजाना इतना अद्भुत पुरस्कार था कि मैं कह नहीं सकता। मैं गिटार बजाता हूं, लेकिन मेरे असली साज और संगीत तो वे हैं। मेरे हृदय की प्यास तो यही है कि मैं कैसे उनके सुर में सुर मिलाऊं, उनके शून्य संगीत में विलीन हो जाऊं। मेरा और मेरे साथियों का भी यही अनुभव है कि उनके इशारों पर गाने बजाने से बड़ा वरदान नहीं है। एक संगीतकार के लिए यह महानतम ध्यान बन सकता है। हम सब वाद्य बन जाते थे और वे हमारे वादक।
यह प्रवचन का अंश ओशो के पिया को खुजन मैं चली सीरीज के 10 नंबर प्रवचन से लिया गया है।
सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि ज्ञान बाहर से मिल सकता है। ज्ञान बाहर से मिल ही नहीं सकता है। ज्ञान तुम्हारा अंतर्भाव है, तुम्हारे भीतर के सूरज का उगना है। फिर बाहर के गुरु का क्या प्रयोजन है? बाहर के गुरु का प्रयोजन वही है जो बाहर के संगीत का होता है। जब कोई तबले पर ताल देता है तो तुमने अनुभव किया तुम्हारे पैर नाचने को उत्सुक हो उठते। क्या हुआ, क्या हो गया? इधर तबले पे ताल पड़ी, किसी ने मृदंग बजाई, उधर तुम्हारे पैरों में क्या होने लगा, कैसी हलचल? तुम नाचने को उत्सुक होने लगे। पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने इस प्रक्रिया के लिए एक नया ही नाम खोजा है, सिंक्रोनिसिटी, समस्वरता। बाहर कोई चीज घट रही है तो ठीक उसके समांतर कोई चीज भीतर घटनी शुरू हो जाती। बाहर संगीत बजा और तुम्हारे भीतर भी कोई धुन बजने लगती। बाहर संगीत बजा और तुम्हारा सिर हिला, तुम्हारे पैर नाचे। वो संगीत तुम्हारे भीतर था, वो पहले भी था जब संगीत नहीं बज रहा था, लेकिन अब संगीत ने उसे जगा दिया। यही काम है बाहर के गुरु का, कि वो बाहर की मृदंग बजा दे, कि बाहर की बांसुरी बजा दे, कि बाहर की वीणा छेड़ दे, कि उसके समस्वर तुम्हारे भीतर जो सोए पड़े हैं उन पर टंकार पड़ जाए, तुम्हें याद आ जाए अपने भीतर की। चितरंजन, गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? तब इस वचन का अर्थ तुम्हें समझ में आ जाएगा। निश्चित ही फिर गुरु के बिना कहीं से ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन गुरु मेरे अर्थों में वो केवल समस्वर पैदा करता है। वह केवल एक संगीतज्ञ है, एक नर्तक है, जो अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाचता है और तुम्हारे भी पैरों में घुंघरू बांधने की इच्छा होने लगती। चाहे तुम्हें नाच ना भी आता हो तो भी तुम्हारे पैर थिरकने लगते। संगीत चाहे तुम्हें ना भी आता हो मगर सिर हिलने लगता है।
प्रवचन का यह अंश ओशो के साधना सूत्र सीरीज के 12 नंबर प्रवचन से लिया गया है।
जीवन में सबसे अधिक सीखने योग्य यदि कुछ है तो संगीत का बोध है। संगीत का भाव, संगीत का अर्थ है कि जीवन का अंतिम रहस्य स्वरों की भीड़भाड़ नहीं है, ना ही एक अराजकता है, ना ही एक अव्यवस्था है, वरन सभी स्वर मिलकर एक ही तरंग, एक ही लय, एक ही इंगित, एक ही इशारा कर रहे हैं। जीवन के परम केंद्र पर सभी संयुक्त है, सुव्यवस्थित है, और जो अव्यवस्था दिखाई पड़ती है वो हमारे अंधेपन के कारण, और जो स्वरों का उपद्रव दिखाई पड़ता है, जो तनाव दिखाई पड़ता है, वो भी हमारे बहरे होने के कारण, क्योंकि हम ठीक से नहीं सुन पाते, इसलिए हम स्वरों के बीच में बहती हुई जो समस्वरता है उसका अनुभव नहीं कर पाते। हमें स्वर तो सुनाई पड़ जाते हैं, लेकिन एक स्वर को दूसरे स्वर से जोड़ने वाला जो बीच का सेतु है संगीत, वो हमें सुनाई नहीं पड़ता। जैसे जैसे सुनने की सामर्थ्य बढ़ेगी, वैसे वैसे स्वर खोते जाएंगे और संगीत उभरने लगेगा। एक ऐसा क्षण भी आता है जब स्वर खो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, सब लहरें खो जाती हैं और केवल संगीत का सागर रह जाता है, केवल संगीत की प्रतीति रह जाती। संगीत का अर्थ है स्वरों के बीच जो प्रेम का संबंध है। एक स्वर दूसरे स्वर से जिस मार्ग से जुड़ा है, एक स्वर दूसरे स्वर में जिस भांति खो जाता है और लीन हो जाता है, ये जो दो स्वरों के बीच में अंतराल है, वो अंतराल खाली नहीं, वो अंतराल भी भरा हुआ है। चाहे वो अंतराल सन्नाटे से ही भरा हो, चाहे वो अंतराल शून्य से ही भरा हो, लेकिन वो अंतराल भरा हुआ है। उस अंतराल को अनुभव करने का नाम जीवन के संगीत को अनुभव करना। सुना होगा कि सत्य शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन शब्दों के बीच में जो खाली जगह होती है वहां प्रकट होता है। और सुना होगा कि रिक्तता तोड़ती नहीं, जोड़ती है। और यह भी सुना होगा कि शून्यता भी मात्र शून्यता नहीं, शून्यता भी एक अपूर्व संगीत से भरी। लेकिन शून्यता को सुनने का, सन्नाटे को सुनने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। जीवन का संगीत अंतरालों में है, अंतराल हमें दिखाई नहीं पड़ते, बीच में खाई खड्डे मालूम पड़ते हैं। एक स्वर सुनाई पड़ता है, फिर दूसरा स्वर सुनाई पड़ता है, लेकिन बीच में कोई सेतु नहीं दिखाई पड़ता। इससे अराजकता अनुभव होती। हम यहां इतने लोग बैठे, एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, फिर दूसरा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, दोनों के बीच में जो जोड़ है वो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए सभी व्यक्ति अलग अलग मालूम पड़ते। अगर बीच का जोड़ दिखाई पड़ जाए तो व्यक्ति यहां खो जाए, जीवन की एक सरिता रह जाए। जैसा मैं देखता हूं, आप महत्वपूर्ण कम हैं, आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति भी कम महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों के बीच जो जीवन बहरा है वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी जीवन के कारण आप भी जीवित हैं और आपका पड़ोसी भी जीवित है, लेकिन वो जीवन अदृश्य है। आप दिखाई पड़ते हैं एक छोर पर, पड़ोसी दिखाई पड़ता है दूसरे छोर पर, बीच में जो जीवन की तरंग है वो दिखाई नहीं पड़ती। दृश्य को ही जो देखता है उसे जीवन में अराजकता दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सभी दृश्य अदृश्य से जुड़े। जो दिखाई पड़ता है वो तो छोर है, जो नहीं दिखाई पड़ता बीच की जो तरंग, बीच की जो लहर, वही वास्तविक अस्तित्व। उस अदृश्य को अनुभव करना ही जीवन के संगीत को अनुभव करना। संगीत का ठीक से अर्थ ख्याल में ले लेंगे, अंतराल को जो भरे हुए, रिक्त को भी जो पूर्ण किए हुए है, शून्य में भी जो पूर्ण की तरह मौजूद है, जो दिखाई नहीं पड़ता और है लेकिन अनुभव किया जा सकता है। जैसे जैसे हम भीतर ज्यादा संवेदनशील होते जाएं, वैसे वैसे अनुभव होने लगे और तब व्यक्ति ना दिखाई पड़ेंगे, उनको जोड़ने वाला परमात्मा दिखाई पड़ेगा। तब एक वृक्ष नहीं दिखाई पड़ेगा, दूसरा वृक्ष नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि दोनों वृक्षों में जो जीवन एक सा बह रहा है, भीतर भी और दोनों वृक्षों के बाहर भी, वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। जिस दिन वो दिखाई पड़ने लगता है उस दिन ये जगत एक की ही अभिव्यक्ति। इसलिए इन सूत्रों में संगीत पर बड़ा जोर दिया गया, क्योंकि संगीत को जो अनुभव कर लेगा, स्वरों को नहीं, स्वरों को जोड़ने वाली तरंगों को, अदृश्य तरंगों को, स्वरों के बीच में बहने वाली लयबद्धता को जो अनुभव कर लेगा, वो ब्रह्म को अनुभव कर लेगा। क्योंकि ब्रह्म वही है जो सबको जोड़े हुए है और दिखाई नहीं पड़ता।
ओशो ने पश्चिम का रॉकनुमा संगीत चुना क्यों? इस संबंध में मिलारेपा बताते हैं।
ओशो सतत हमारी चेतना पर प्रयोग करते रहे। वे एक खास तरह की उत्सवमय ऊर्जा बुद्ध सभागार में चाहते थे। खासकर जैसे जैसे उनका शरीर क्षीण होने लगा, उन्होंने संगीत को और तेज मस्ती भरा कर दिया। हमारी उत्सव में ऊर्जा उनका पोषण करती थी। अमेरिका से लौटने के बाद शुरू शुरू में उन्होंने सुबह के प्रवचनों में भारतीय संगीत और शाम को पाश्चात्य संगीत को चुना, लेकिन धीरे धीरे वे पाश्चात्य संगीत पर स्थिर हुए। शायद जिस तरह की उत्साहवर्धक ऊर्जा वे चाहते थे वह इससे शीघ्रता से पैदा होती है, और इस समय तक नृत्य उनके प्रवचनों का अविच्छिन्न अंग हो गया। हमारे आनंद और उत्सव की लहरों पर सवार होकर ही वे बुद्ध कक्ष में प्रवेश करते थे।
प्रवचन का यह अंश ओशो के अथातो भक्ति जिज्ञासा सीरीज के प्रवचन नंबर 1 से लिया गया है।
तुम्हारे जीवन में बड़ी छंदहीनता है, तुम्हारा जीवन टूटा फूटा हुआ सितार है जिसके तार या तो बहुत ढीले हैं या बहुत कसे हैं, और जिस तार पर कैसे उंगलियां रखें उसका शास्त्र ही तुम भूल गए हो, और जिस सितार को कैसे बजाएं, कैसे निनादित करें उसकी भाषा ही तुम्हें नहीं आती। तुम सितार लिए बैठे हो, सितार में छिपा संगीत तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, और जीवन बड़ी पीड़ा से भरा है। ये सारी पीड़ा रूपांतरित हो सकती है, तुम गाओ, तुम गुनगुनाओ, तुम्हारे भीतर की सरिता बहे, तुम नाचो। भक्ति जीवन का परम स्वीकार है, इसलिए शुभ है कि सांडिल अपने इस अपूर्व सूत्र ग्रंथ का उद्घाटन ओम से करते हैं। ठीक ही है, क्योंकि भक्ति जीवन में संगीत पैदा करने की विधि है। जिस दिन तुम संगीतपूर्ण हो जाओगे जिस दिन तुम्हारे भीतर एक भी स्वर ऐसा न रहेगा जो व्याघात उत्पन्न करता है, जिस दिन तुम बेसुरे ना रहोगे, उसी दिन प्रभु मिलन हो गया। प्रभु कहीं और थोड़ी, छंदबद्धता में, लयबद्धता में। जिस दिन नृत्य पूरा हो उठेगा, गान मुखरित होगा, तुम्हारे भीतर का छंद जिस क्षण स्वच्छंद होगा, उसी क्षण परमात्मा से मिलन हो गया। इसलिए तो कहते वेद कि ओम को जिन्होंने जान लिया उन्हें जानने को कुछ शेष न रहा। ये शास्त्र में लिखे हुए ओम की बात नहीं है, ये जीवन में अनुभव की गए अनुभूत छंद की बात है। गायत्री तुम्हारे भीतर छिपी, भगवत गीता भी, कुरान की आयतें तुम्हारे भीतर मचल रही, तड़फ रही, मुक्त करो। तुम्हारे भीतर बड़ा रुदन है, जैसे किसी वृक्ष में हो जिसके फूल नहीं खिले, जैसे किसी नदी में हो चट्टानों के कारण जो बह न सकी और सागर से मिल न सकी, जिस वृक्ष में फूल नहीं आते उसकी पीड़ा जानते हो। है और नहीं जैसा, जब तक फूल ना आए और जब तक सुगंध छिपी है जो पड़ी प्राणों में, जड़ों से जो मुक्त होना चाहती है, जो पक्षी बन के उड़ जाना चाहती आकाश में, जो पंख फैलाना चाहती है, जो चांद तारों से बात करना चाहती। बहुत दिन हो गए कारागृह में जड़ों की पड़े पड़े, जो छूट जाना चाहती है सब जंजीरों से। जब तक वह सुगंध फूलों से मुक्त ना हो जाए तब तक वृक्ष तृप्त कैसे हो, तब तक कैसी तृप्ति, कैसा संतोष, कैसी शांति, कैसा आनंद। तब तक वृक्ष उदास, ऐसे ही वृक्ष तुम हो। तुम्हारे भीतर ओंकार पड़ा है बंधन में, जंजीरों में, मुक्त करो उसे। गाओ, नाचो, ऐसे नाचो कि नाचने वाला मिट जाए और नाच ही रह जाए, उस क्षण पहचान होगी ओंकार से। ऐसे गाओ कि गायक ना बचे, गीत ही रह जाए, उस क्षण तुम भगवत गीता हो गए। जिस क्षण गाने वाला भीतर ना हो और गान अपनी सहज स्फुरणा से बहे, उस क्षण तुम कुरान हो गए। उस दिन तुम्हारे भीतर परम काव्य का जन्म हुआ। उस दिन जीवन साधारण ना रहा, असाधारण हुआ। उस दिन जीवन में दीप्ति आई, आभा उपजी। इसलिए ओम से प्रारंभ है। इस ओम में इशारा है कि तुम अभी ऐसे वृक्ष हो जिसके फूल नहीं खिले, और बिना फूल खिले कोई संतुष्टि नहीं, कोई परितोष नहीं। ओम अथा तो भक्ति जिज्ञासा। और ये तुम्हें ख्याल में आ जाए कि मेरे फूल अभी खिले नहीं, कि मेरे फल अभी लगे नहीं, कि मेरा वसंत आया नहीं, कि मैं जो गीत लेकर आया था मैंने अभी गाया नहीं, कि जो नाच मेरे पैरों में पड़ा है मैंने घूंघर भी नहीं बांधे, वो नाच अभी उन्मुक्त भी नहीं हुआ। ये तुम्हें समझ में आ जाए तो अथा तो भक्ति जिज्ञासा, फिर भक्ति की जिज्ञासा। उसके पहले भक्ति की कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती। भक्ति की जिज्ञासा का अर्थ ही ये है कि मैं टूटा फूटा हूं, अभी मुझे जुड़ना है। मैं अधूरा अधूरा हूं, अभी मुझे पूरा होना है। कमियां हैं, सीमाएं हैं हजार मुझ पर, सब सीमाओं को तोड़कर बहना है। बूंद हूं अभी और सागर होना है। अथा तो भक्ति जिज्ञासा। त तभी तो तुम जिज्ञासा में लगोगे।
आज के प्रवचन का यह अंश ओशो के साधना सूत्र सीरीज के 12 नंबर के प्रवचन से लिया गया है।
ध्यान तुम्हारे भीतर परमात्मा का ही अंश है, इसलिए परमात्मा की तरफ ले जाता है। ध्यान रखना, जो जिससे जुड़ा है उसी का यात्रा पथ बन जाता है। तो अगर तुम उस महासंगीत को सुनना चाहते हो वैसे ही जैसे तुम हो तो न सुन पाओगे, क्योंकि तुम इतने असंगीत से भरे हो, तुम्हारी जिंदगी इतनी स्वर माधुरी से हीन है, तुम्हारे भीतर उपद्रव तो बहुत है, लयबद्धता जरा भी नहीं। तुम्हारे उठने में, बैठने में, चलने में, जीने में, सोचने में एक भीड़ भाड़ शोरगुल है, जैसे तुम एक बाजार की सड़क जिस पर न मालूम क्या क्या चल रहा है, जिसके बीच कोई व्यवस्था नहीं है, अराजकता है। इस अराजक स्थिति से अगर तुम चाहो कि तुम उस महासंगीत को सुन लोगे तो असंभव है, पर अगर तुम थोड़ी चेष्टा करो तो उसके खंड सुनाई पड़ सकते, क्योंकि तुम चाहे कितनी ही अराजकता में हो, तुम जीवित हो यही इस बात की खबर है कि कुछ ना कुछ लय तुम्हारे भीतर भी होगी, अन्यथा जी नहीं सकते हो, तुम टूट जाते, बिखर जाते। अगर सच में ही तुम्हारी भीड़ इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हारे भीतर उस भीड़ को जोड़ने वाला कोई भी ना बचा हो, तो तुम खंड खंड होकर गिर जाओगे, तुम उस मकान की तरह गिर जाओगे जिसके ईंटों के बीच का सब जोड़ खो गया, तुम भूमिसात हो जाओगे। लेकिन तुम जीवित हो, मिट नहीं गए हो, भूमि साथ नहीं हुए हो, इसलिए चाहे कितना ही उपद्रव तुम्हारे भीतर हो और कितने ही स्वरों के बीच तनाव हो और कितने ही स्वरों के बीच संघर्ष हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तुम्हें जोड़ती होगी, अन्यथा तुम हो कैसे सकते हो, कोई ना कोई चीज तुम्हें बांधे होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संगीत तुम्हारे इस उपद्रव में भी मौजूद, चाहे कभी उसकी झलक मिलती हो, किसी दिन सुबह सूरज को उगते देखकर तुम्हें शांति की लहर दौड़ जाती हो, या किसी दिन रात आकाश में तारे भरे हो और तुम जमीन पर लेटे उन्हें देख रहे हो, अचानक सब मौन हो जाता हो, या किसी के प्रेम के क्षण में, या किसी संगीत को सुनकर, या किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हारे भीतर भी कुछ नृत्य बन जाता हो, कहीं कोई क्षणों में तुम्हें भी एक झलक संगीत की मिलती, उस झलक को ही तुम कभी सुख कहते हो, उसी झलक को तुम कभी शांति कहते हो, उसी झलक को कभी तुम रस कहते हो। तुमने बहुत नाम दिए हैं, लेकिन वो झलक इसी बात की है, बाहर की कोई घटना की उपस्थिति में भीतर तुम बंध जाते हो, तुम्हारा उपद्रव एक क्षण को खो जाता है और तुम्हारे भीतर स्वर एक क्षण को मिल जाते, लहरें एक क्षण को सागर हो जाती और तुम्हारे भीतर जैसे एक द्वार खुल जाता है, क्षण भर को ही सही एक झलक मिलती है और जगत दूसरा हो जाता। ये संभावना है, खंड ही तुम्हें अनुभव में आएगा, बहुत दूर की ध्वनि तुम्हें सुनाई पड़ेगी। इसलिए सूत्र कहता है पांचवा, सुने गए स्वर माधुरी को अपनी स्मृति में अंकित करो। तुम्हारे जीवन में जो भी ऐसी घटनाएं घटी हो जब तुमने रस का, संगीत का, लय का अनुभव किया हो, तो उनको अपनी स्मृति में संजो, उनको खो मत जाने दो। ईसाइयों का एक पुराना संप्रदाय था इसेन, जिसमें जीसस को दीक्षा मिली थी। इसेन संप्रदाय का एक ध्यान मार्ग था, और वो ध्यान मार्ग ये था कि तुम्हारे जीवन में अगर कभी भी कोई ऐसा क्षण घटा हो जिस क्षण में विचार न रहे हो और तुम आनंद से भर गए हो, तो उसी क्षण को पुनः पुनः स्मरण करके उसी पर ध्यान करो, वो क्षण कोई भी रहा हो, उसी को बार बार स्मरण करके उस पर ही ध्यान करो, क्योंकि उस क्षण में तुम अपनी श्रेष्ठतम ऊंचाई पर थे जहां तक तुम अब तक जा सके हो। उसी को खोदो, उसी जगह मेहनत करो। सभी के जीवन में ऐसा कोई क्षण है? उसी के आशा में आदमी जिए चला जाता है कि शायद फिर आए, इसी भरोसे में जिए चला जाता है कि शायद और गहरा हो जाए। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसके जीवन में एकाध ऐसी स्मृति ना हो। कभी कभी तो बहुत क्षुद्र कारणों में वैसी घटना घट जाती है। कभी तुम जा रहे हो, सूरज की किरणें तुम्हारे सिर पर पड़ रही, अचानक तुम पाते हो कि तुम शांत हो, तुमने कुछ किया नहीं, आकस्मिक तुम उस जगह आ गए हो जहां ट्यूनिंग हो गई। कभी बहुत साधारण सी घटनाओं में तुम अपने बिस्तर पर पड़े हो, सुबह तुम्हारी आंख खुली और अचानक तुम पहचान भी नहीं पाते कि तुम कौन हो। वो जो आदमी रात सोया था, उपद्रव परेशानी चिंता से भरा, वो नहीं है। एक क्षण को तुम्हें यह भी समझ में नहीं आता कि तुम कहां हो, तुम एकदम शांत हो, तुम इतने शांत हो कि खुद की पहचान भी भूल गई। कभी किन्हीं भी कारणों में, उनका कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे भीतर जिंदगी चलती रहती है। कभी तुम्हारे अनजाने भी तुम्हारे भीतर के खंड खंड इकट्ठे पड़ जाते संयोग बस, और तब कोई भी घड़ी बाहर मौजूद हो तुम अचानक शांत हो जाते। इन स्मृतियों को संजो। फिर अगर तुम ध्यान कर रहे हो तो ऐसी स्मृतियां बढ़ती चली जाएंगी। इन स्मृतियों को इकट्ठा करो, इनको एक कोने में हृदय के इकट्ठे करते जाओ ताकि वे गहरी हो जाएं, और सारी स्मृतियां जितनी तुम्हारे जीवन में इस आनंद की घटी हो जब तुमने संगीत जाना हो, उन सबको पास ले आओ, उनको एकाग्र कर दो एक बिंदु पर, ताकि उन सबके सहारे तुम आगे बढ़ सको। अभी तुम्हें खंड खंड मिलेंगे, तुम उन्हें इकट्ठे करते जाना। कभी ये खंड इकट्ठे होते जाएंगे तो और बड़े खंडों को मिलने की संभावना बढ़ती जाएगी। ऐसे धीरे धीरे एक एक ईंट रखकर वो भवन खड़ा होगा जिस दिन तुम उस महासंगीत को सुन सकोगे जिसे जीवन का संगीत कहा जा रहा है।
का ध्यान है नृत्य और संगीत ध्यान। चले देखें और अनुभव करें कि ओशो कैसे नृत्य और संगीत के साथ हमें गहरे ध्यान में ले जाते हैं।
परमात्मा चारों तरफ कितने उत्सव में, चांद तारों में, सब तरफ उत्सव चल रहा, अहिर्नस, सब तरफ नृत्य है, गान है। प्रभु से मिलने का निकटतम मार्ग है नृत्य, आनंद से प्रभु मिलता है। ये दोनों बातें जुड़ी, आनंद से प्रभु मिलता है, प्रभु से और आनंद मिलता है, और जब और आनंद मिलता है तो और प्रभु मिलता है, और प्रभु मिलता है तो और आनंद मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े। बुलाओ प्रभु को, आनंद के आंसुओं से बुलाओ। पैरों में घुंघर बांधो, नृत्य गीत गान से बुलाओ। रास रचाओ, नाचो गाओ, बुलाओ प्रभु को।
आज दर्शन में संगीत की जो संरचना स्थायी हो गई है वह पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर समन्वय है। पहले ड्रम्स और सिंथेसाइजर की आंधी तनमन को झंझोड़ देती है और उसके बाद मोमबत्ती के स्निग्ध प्रकाश की तरह कोई सांध्यकालीन राग सितार या बांसुरी के नाद से हृदय में शांति का प्रेम का सिंचन करता है।
तो मित्रों, जागने का समय आ गया है, गाने व नाचने का समय आ गया है, तो जागें और नाचें। मिला रेपा के लिखे इस गीत के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा प्यार भरा नमस्कार आप सबको। द यूनिवर्स इज सिंगिंग ए सॉन्ग, द यूनिवर्स इज डांसिंग अलोंग, द यूनिवर्स is singing on a day like this, and it's high time to dance, and it's high time to dance, so wake up and dance.